स्वर्ग में प्रभु का जीवे वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर नानाज करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए रेडियो के निकट अपने प्रिय मित्र और परिवारों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मेरे प्रियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा कि सहस्त्र वर्षीय राज्य में परमेश्वर किस प्रकार से शासन करेगा और इसके पूर्व हमने इस बात को देखा कि शैतान हजार वर्ष के लिए बांधा गया और कुछ समय के लिए फिर से उसे छोड़ा गया। लेकिन आज हम जब अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि शैतान आग की झील में डाला गया। तो आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से बार आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन करें। हमारे श्रोता भाई बहन इस समय जब अलग अलग स्थानों पर रेडियो के निकट बैठे हैं ताकि आपके वचन को सुने, हमारी विनती है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन में से सुनते हैं तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए। हमारी प्रार्थना है पिताजी, उन भाई बहनों के लिए जो निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं, आप उनकी भी सुधि लें, उनकी भी सहायता करें, ताकि वे आप में जयवंत होने पाए। पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम आज प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 20 अध्याय से आगे बढ़ेंगे और इसका शीर्षक हम देखते हैं, शैतान आग की झील में डाला गया। आप मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 20 अध्याय उसके 10 पद। यहां पर लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। यह एक अत्यंत गंभीर पद है जिसे हमारे आज के युग में लोग अनदेखा करते हैं, तथापि यह परमेश्वर की संतान के लिए एक बड़ी राहत है कि उसका और परमेश्वर का बैरी अंततः चिरस्थाई दंड पाएगा। यहां जिज्ञासा और पीड़ा को शांत करने वाला कुछ भी नहीं है। यहां एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां हवा अर्थात पवन भी शांत है। यदि मनुष्य यह बात कह रहा होता है तो वह इतना कहकर रुकता नहीं, और भी अधिक कुछ कहना चाहता है और रुकता नहीं, जिसे सर रॉबर्ट एंडरसन कहते हैं भविष्यवाणी बेचने वालों की असंयमित बातें, अर्थात वे रुकते नहीं और बातें करते हैं। मेरे मित्रों, हमने देखा है कि मनुष्य परमेश्वर के वचन से भी आगे बढ़ जाने में संकोच नहीं करता है। परमेश्वर का वचन जो मित्रभाषी है, नरक हो या स्वर्ग, इस विषय पर वचन में बहुत कम चर्चा की गई है। यहां अनेक तथ्य हैं जो प्रचलित विचार के विपरीत हैं। सबसे पहला, शैतान आज नरक में बंद नहीं है, वह आकाश की शक्ति का शासक है, वह इस संसार के वृहत नियंत्रण में रखता है। निसंदेह परमेश्वर ने उसे आज पूर्ण रीति से स्वतंत्रता नहीं दी है, परंतु महाक्लेश में वह कुछ समय के लिए निरंकुश हो जाएगा। दूसरा तथ्य है, शैतान सबसे पहला नहीं जो नरक में जाएगा। उसके नरक में डाले जाने से 1000 वर्ष पूर्व पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता नरक में होंगे। अंतिम तथ्य है कि नरक आग और गंधक की झील है। इसका गंभीर वर्णन प्रभु यीशु ही ने किया था। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 41 पद में लिखा है, तब वह बाएं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और तब हम मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 12 पद में पढ़ते हैं, जहां लिखा है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मेरे मित्रों, यह सुनकर कोई भी सोचने पर विवश होगा, यह कैसे हो सकता है कि नरक, बाहरी अंधकार और आग और गंधक की झील, ये सब कैसे हो सकती है। प्रभु यीशु ने यह भी कहा था मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 42 पद में, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 44 पद में लिखा है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। मेरे विचार में आग की सच्चाई का यथार्थ चित्रण आग ही है। उदाहरण स्वरूप, आत्मा में किए गए पाप देह में दंड कैसे पाएंगे। मेरे विचार में बाहरी अंधकार और अधोलोक का अर्थ है परमेश्वर से अलग होना और संसार में जीवन को गलत रीति से उपयोग करने पर विचार करना। क्या आप किसी ऐसी आग के बारे में सोच सकते हैं जो उस आग से भी गर्म हो जो आपको तब जलाए जब आपका पुत्र कहे, पिताजी मैं आपके पीछे पीछे यहां आ गया हूं। यह एक अत्यंत गंभीर बात है। किसी ने डॉक्टर विल एंडरसन से पूछा, यदि हम वहां जाएं और देखें कि आप नरक के बारे में जो कहते हैं वह सही नहीं है तो? डॉक्टर एंडरसन ने कहा, तो मैं क्षमा मांग कर कहूंगा कि मैंने प्रभु की बात को गलत समझा। परंतु यदि हम वहां पहुंचने के बाद देखें कि यह सच है तब क्या होगा? मेरे मित्रों, यह सच है। यह परमेश्वर का वचन है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद से अत्यधिक लगाव रखते हैं, परंतु हम उसके बारे में सोचते क्या हैं? आग वास्तव में परमेश्वर से अनंतकालीन वियोग है, अत्यधिक दुर्बल द्योतक है। द्योतक तो वास्तव में वास्तविकता का दुर्बल प्रतिनिधि ही होता है, न ही आप इसे वास्तविकता से कम किसी कल्पना की हवा में उड़ा सकते हैं। और सच तो यह है कि वास्तविकता विवरण से कहीं अधिक गंभीर होती है और मानवीय भाषा भयानक तथ्य का वर्णन करने में असमर्थ है, अर्थात अपर्याप्त है। नरक एक स्थान है और एक दशा भी है, वह अनंत पीड़ा का स्थान है। यह परमेश्वर के वचन की भाषा है जिससे आप बच नहीं सकते हैं। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं कि बड़े श्वेत सिंहासन की स्थापना जहां खोए हुओं का न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय के 11 पद में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। ध्यान दीजिए, बड़े श्वेत सिंहासन के न्याय को लोग प्रायः परमेश्वर का आम न्याय कहते हैं, या यूं कहें कि आग का न्याय कहते हैं। यह आग न्याय इस संदर्भ में है कि हर एक युग के खोए हुए इस न्याय के लिए फिर जी उठेंगे। उद्धार पाने वालों में से मृतक तो पहले पुनरुत्थान में जी उठेंगे, महाक्लेश के भक्त जन भी इस पुनरुत्थान के भागी होंगे, परंतु खोए हुओं का जी उठना दूसरा पुनरुत्थान होगा कि उनका निष्पक्ष न्याय हो, उद्धार के संदर्भ में उनके कर्मों का मूल्यांकन हो। मरणशया पर पड़े एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, प्रचारक साहब, आपको मुझसे भविष्य की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं प्रयास करके देखूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर न्यायी एवं धर्मी है और वह मेरे कर्मों को स्वीकार करेगा। मैंने उससे कहा, आपका कहना ठीक है, वह न्यायनिष्ठ एवं धर्मी है और आपके कर्मों को स्वीकार भी करेगा, उसने भी यही कहा है। परंतु मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उस न्याय में किसी का उद्धार नहीं होगा क्योंकि मनुष्य कर्मों से उद्धार नहीं पाता है। ध्यान रखें, जब आप परमेश्वर की धार्मिकता के प्रकाश में खड़े होंगे तब आपके कर्म ऐसे छोटे दिखाई देंगे कि उनका महत्व कुछ भी नहीं होगा। एक दिन एक बच्चा अर्थात पोता अपनी दादी के लिए कुछ फूल लाया। वे फूल देखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने बड़े घमंड से अपनी दादी को वे फूल दे दिए। उसकी दादी ने उसको पीठ में थपथपाते हुए उन फूलों के लिए उसको धन्यवाद कहा। मेरे प्रियो, मैं यह देखकर मुस्कुरा सकता हूं, जिस दिन ये सब भले मनुष्य प्रभु यीशु के समक्ष अपने कर्मों का गुलदस्ता लेकर के आएंगे, उस समय प्रभु यीशु के समक्ष जिसे उन्होंने अस्वीकार किया था, वे तो सोच रहे होंगे कि प्रभु यीशु उस दादी माँ के समान उनके सिर पर हाथ रख करके कहेगा, तुम तो वास्तव में बड़े अच्छे हो। परंतु मेरे प्रियो, यह गंभीर एवं महत्वपूर्ण बात है, उसकी उपस्थिति में खड़े होने के लिए आपको उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा। आपको प्रभु यीशु की धार्मिकता ग्रहण करनी होगी, पहनने की आवश्यकता है। क्या आप नहीं जानते कि इसके बिना हम पापी हैं और परमेश्वर से अलग हैं? उसकी धार्मिकता को पहने बिना हम उसके समक्ष खड़े नहीं हो सकते हैं। हमारी मानसिकता है कि स्वयं की तुलना दूसरों से करें। मैं क्या उससे कम अच्छा हूं? निश्चय ही आप अच्छे हैं, परंतु आपको उस व्यक्ति को जानना चाहिए। सैमुएल जॉनसन ने कहा है, प्रत्येक मनुष्य अपने बारे में जो जानता है उसे अपने घनिष्ठ मित्र को भी बताने का साहस नहीं करता है। आप अपने आप को जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि आप कौन कौन सी बातें छिपाते हैं जिन्हें आप किसी कीमत पर किसी को भी नहीं बताएंगे। प्रभु यीशु इन सब बातों को भी जानता है और इन सब बातों को न्याय के दिन प्रकट करेगा, जब आप अपने कर्मों का गुलदस्ता उसे भेंट करेंगे। वह आपके बारे में आपको सब कुछ बताएगा। इसी कारण आपको आज एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जो आपको बचा सके। मेरे प्रियो, यह बड़ा श्वेत सिंहासन है और इस सिंहासन की पवित्रता स्वर्ग और पृथ्वी की प्रतिक्रिया द्वारा प्रकट होती है। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। देखिए, इस पर जॉन एफ वलवुड टीका करते हुए कहते हैं, पृथ्वी और आकाश के भाग जाने की व्याख्या है कि वर्तमान पृथ्वी और आकाश नष्ट हो गए तथा नया आकाश और नई पृथ्वी प्रकट हुए। यह अध्याय 21 अध्याय उसके एक पद द्वारा पुष्ट किया गया है, जहां यूहन्ना पहले आकाश और पृथ्वी को दूसरे आकाश और पृथ्वी द्वारा प्रतिस्थापित होते हुए देखता है। उस सिंहासन पर जो बैठा है वह प्रभु यीशु है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 22 पद और 26 से 29 पद में प्रभु यीशु स्वयं कहता है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के लिए पुनरुत्थान में जी उठेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? कहता है कि वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे जिन्होंने भलाई की है, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। परमेश्वर का कार्य क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 29 पद में लिखा है, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। अच्छे काम करने वालों में क्या वे लोग हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और जीवन के लिए पुनरुत्थान के भागी हैं? प्रथम पुनरुत्थान के द्वारा से आप भागी हो सकते हैं। मेरे प्रियो, बुरा करने वाले दंड और परित्याग के पुनरुत्थान के भागी हैं। यह बड़े श्वेत सिंहासन का न्याय है। यहां पर पहचान होगी अच्छे और बुरे की, कि आप उसकी दृष्टि में क्या है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसके 12 और 13 पद में आगे लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। जी हां मेरे मित्रों, वहां आपका निष्पक्ष न्याय होगा। प्रभु यीशु आपके जीवन को सिनेमा के समान दिखाएगा और देखकर आपको किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं लगेगा। क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के समक्ष खड़े होकर के अपनी जीवनी को चित्रवद रूप से देखें? क्या आप सोचते हैं कि आपका जीवन इस परीक्षा का सामना कर पाएगा? मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मुझसे तो देखा नहीं जाएगा। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद हो। इफिसियों के पत्र 2 अध्याय के 8 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान हमारे लिए है कि हम उस पर विश्वास करें और अनुग्रह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। मेरे मित्रों, लिखा है, मृतकों को छोटे और बड़े में विभाजित किया गया है, ये सब खोए हुए हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। वे कभी भी परमेश्वर के निकट उद्धार के लिए नहीं आए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:40 में प्रभु यीशु अपनी पीढ़ी से कहता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। ये लोग जो उसके सिंहासन के समक्ष खड़े हैं उसके पास नहीं आए थे। इन पुस्तकों में सबके काम लिखे गए हैं। परमेश्वर के पास सबके टेप रिकॉर्ड हैं और वह सही समय पर उन्हें चलाएगा। यदि आपका उद्धार हो गया है तो आपके लिए वह आनंद का समय होगा। कुछ प्रचारक अपनी जीवनी देख करके प्रसन्न नहीं होंगे। यदि आपका उद्धार हो गया है तो उस दिन आप श्वेत सिंहासन के सामने नहीं होंगे। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो प्रभु यीशु के न्यायसन के समक्ष आपके कर्मों का न्याय होगा कि आपको प्रतिफल मिले। इसे हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 उसके 10 में देख सकते हैं। श्वेत सिंहासन का न्याय खोए हुओं के लिए है। मेरे प्रियो, मनुष्य प्रायः अपने कर्मों का फल पाना चाहता है। यहां उनको एक अवसर दिया जाएगा, परंतु मनुष्य कर्मों से उधार नहीं पाएगा। तब हम आगे देखते हैं कि समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। जी हाँ, वे सब जो समुद्र में डूब गए हैं और जिनके मृतक शरीर समुद्री रसायनों में गल गए, वे भी जी उठेंगे। परमेश्वर के लिए यह कोई समस्या की बात नहीं है। वे विघटित होकर अनुरूप में हो गए हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें जोड़कर फिर से तैयार कर देगा। पृथ्वी की कब्रें अपने मृतकों को दे देंगी और अधोलोक जिसमें मृतकों की आत्माएं हैं वे भी वहां से निकल आएंगी। और तब हम आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 उसके 14-15 में, जो इस अध्याय का अंतिम पद है। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। मेरे मित्रों, अधोलोक वह स्थान है जहां अदृश्य मृतक रहते हैं, और उसके दो भाग हैं, स्वर्ग लोक और पीड़ा का स्थान। आप देखें लूका रचित सुसमाचार 16 उसके 19-31 में। स्वर्गलोक उस समय खाली हो गया था जब प्रभु यीशु अपने स्वर्गरोहण के समय पुराने नियम के भक्त जनों की आत्माओं को अपने साथ स्वर्ग ले गया था। इफिसियों के पत्री 4:8-10 में पौलुस कहता है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। प्रभु यीशु ने दो काम किए। उसने यहां मनुष्यों को दान दिया और वह पुराने नियम के भक्तों को जो मर चुके थे अधोलोक से निकालकर अपने साथ स्वर्ग ले गया। परंतु पीड़ा का स्थान श्वेत सिंहासन के न्याय के समय अपने मुर्दे दे देगा, और लिखा है कि वे आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। यह दूसरी मृत्यु है। प्रभु यीशु ने इस स्थान को बाहरी अंधकार भी कहा है। हमारा मानना है कि यह वास्तविक आग और बाहरी अंधकार से कहीं अधिक भयानक है। यह परमेश्वर से अनंत वियोग है, क्योंकि मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से अलग हो जाना। मृत्यु मनुष्य का अति भयानक शत्रु अंततः दृश्य से विलोप हो गया। अब कभी नहीं कहा जाएगा कि आदम से सब मरते हैं। आप पढ़ें 1 कुरिन्थियों की पत्री 15:22 को। यहां मृत्यु को व्यक्ति रूप दिया गया है, क्योंकि वह मनुष्य का एक भयंकर शत्रु है। पुराने नियम में होशे 13:14 लिखा है, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरे नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? और तब हम 1 कुरिन्थियों की पत्री 15:26-55 में पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस लिखता है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। अधोलोक खोई हुई आत्माओं का बंदी गृह भी इसी प्रकार आग की झील में डाला जाएगा। खोए हुए अधोलोक में नहीं, आग की झील में होंगे। यही शैतान, पशु, झूठा भविष्यद्वक्ता और उसके लाडले, उसके प्रेमी सब वहीं होंगे। यदि मनुष्य परमेश्वर का जीवन ग्रहण नहीं करता है तो उसे विकल्प ही स्वीकार करना होगा, अर्थात शैतान के साथ अनंत सहभागिता। परमेश्वर ने मनुष्य को यहां डालने के लिए नहीं बनाया था, परंतु उसके लिए दूसरा स्थान भी था, नरक शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए बनाया गया था। और मेरा मानना है कि परमेश्वर वहां कभी नहीं जाता है। दूसरी मृत्यु का अर्थ है कि परमेश्वर से अनंतकालीन पूर्ण वियोग, अर्थात अब कोई दूसरा मौका आपके लिए नहीं है, आप परमेश्वर से सदा के लिए अलग हो जाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हम आज बहुत ही गंभीर स्थिति पर हैं, क्योंकि हम हमारे जीवन के उस अंतिम दिन को देख रहे हैं, क्योंकि हमारा न्याय होने वाला है और हम इस संसार में शैतान की ओर भाग रहे हैं, न कि परमेश्वर की ओर। समय बहुत कम है, चुनाव हमारे हाथों में है। आज के जीवन के लिए आप चिंता ना करें, परंतु उस मृत्यु के बाद उस जीवन की चिंता करें, क्योंकि वह अनंत काल के लिए होगा। आप हमेशा के लिए जलती हुई आग में, झील में पड़े होंगे। क्या आप यही चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में हो? निर्णय आपको लेना है। मेरे श्रोता मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
परना।